एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पे बात करने वाले हैं। ये किताब कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो बहुत बुनियादी लगते हैं लेकिन हैं बेहद जरूरी सवाल, विकास के बारे में, तरक्की के बारे में, और हम इसे नापते कैसे हैं, खासकर अफ्रीका जैसे बड़े महाद्वीप में।
नमस्ते।
और आज हम जिस किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं वो है मॉर्टन ज़रवाइन की पुअर नंबर्स, हाउ वी आर मिसलेड बाय अफ्रीकन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। नाम थोड़ा लंबा जरूर है पर जो मुद्दा ये उठाती है वो ऐसा है जिस पर हम शायद रोजमर्रा में ध्यान नहीं देते।
बिल्कुल।
लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा है।
हाँ, और ये आज इतनी जरूरी क्यों लगती है? वो इसलिए क्योंकि हम हर रोज सुनते हैं ना, अखबारों में, टीवी पर, इंटरनेट पर देखते हैं कि देशों की तरक्की के आंकड़े आ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ इतनी हुई, गरीबी इतनी कम हो गई
जी।
लेकिन क्या ये नंबर, क्या ये आंकड़े वाकई सच बता रहे होते हैं
जी।
ये किताब हमें यही सिखाती है कि इन आंकड़ों के पीछे झांकना, उनकी कहानी को समझना क्यों जरूरी है,
खासकर जब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, मतलब अरबों डॉलर का निवेश, नीतियां, सब कुछ।
सही कहा।
और इन आंकड़ों की कहानी जो हमें सुना रहे हैं लेखक मॉर्टन ज़रवाइन, वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प हैं। वो कोई मतलब टिपिकल अर्थशास्त्री या स्टैटिस्टिशियन नहीं है, वो एक आर्थिक इतिहासकार हैं, एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन।
अच्छा।
और उनकी खास बात यह है कि वो अफ्रीका के आर्थिक विकास के इतिहास को और उसे नापने के लिए जो आंकड़े इस्तेमाल हुए हैं उनके इतिहास को, इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
हाँ, और उनकी बात में वजन इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर डेटा नहीं खंगाला। ज़रवाइन ने असल में अफ्रीका के कई देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज में जाकर वक्त बिताया।
अच्छा, जमीन पर काम किया है मतलब?
बिल्कुल। वहाँ काम करने वालों से लंबी बातचीत की, पुराने सरकारी दस्तावेज देखे, धूल भरी फाइलों को खंगाला। उन्होंने जमीन पर उतरकर ये समझने की कोशिश की कि भाई ये नंबर आखिर बनते कैसे हैं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है।
ये वाकई एक अलग नजरिया है। वो अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान, इन तीनों को मिला देते हैं अपनी सोच में। इससे उन्हें सिर्फ आंकड़ों की जो तकनीकी कमियां हैं वही नहीं दिखती, बल्कि उनके पीछे की जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, ऐतिहासिक वजह हैं, संस्थागत दिक्कतें हैं, वो सब भी समझ आती हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि आंकड़े खराब हैं, वो बहुत गहराई से समझाते हैं कि ये क्यों और कैसे खराब हैं। ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की बात है।
तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। इसका मोटा मोटा सार क्या है?
देखिए, ये किताब मूल रूप से ये कहती है कि अफ्रीकी देशों के जो आर्थिक आंकड़े हैं, खासकर जीडीपी के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
हाँ, सकल घरेलू उत्पाद
जी, वो अक्सर भरोसे लायक नहीं होते, उनमें बहुत कमियां होती हैं। और ये पुअर नंबर्स या खराब आंकड़े, जैसा किताब का नाम है, ये हमें अफ्रीका की आर्थिक हकीकत की एक धुंधली और कई बार तो बिल्कुल गलत तस्वीर दिखाते हैं।
और ज़रवाइन का सबसे बड़ा तर्क ये है, अगर मैं सही समझी हूँ, कि ये सिर्फ कोई टेक्निकल गलती नहीं है, मतलब हिसाब किताब की भूल नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, यही उनका मेन पॉइंट है। आंकड़ों का ये जो हाल है वो अफ्रीका की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से, वहाँ के सरकारी संस्थानों की जो कमज़ोर क्षमता है उससे, और अफ्रीकी सरकारों और जो अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF, उनके बीच के जो उलझे हुए रिश्ते हैं, उन सबसे जुड़ा हुआ है।
अच्छा।
हम इन आंकड़ों को जितना सटीक मानकर चलते हैं ना, वो भ्रम खतरनाक है, क्योंकि इसी भ्रम के आधार पर नीतियां बनती हैं, फैसले होते हैं।
सही कहा। और किताब का मकसद शायद यही है, पॉलिसी बनाने वालों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पढ़ने वालों को और हम जैसे आम लोगों को ये समझाना कि अफ्रीका के विकास के बारे में हमारी जो समझ है वो कितनी कच्ची बुनियाद पर टिकी हुई है।
बिल्कुल। ज़रवाइन चाहते हैं कि हम आंकड़ों को आंख मूंद कर स्वीकार ना करें, सवाल पूछें, उनकी पड़ताल करें। वो इसे एक शब्द देते हैं, सांख्यिकीय विनम्रता, स्टैटिस्टिकल ह्यूमिलिटी।
सांख्यिकीय विनम्रता?
हाँ जी।
मतलब
ये मानना कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं जानते, और हमारे आंकड़े अधूरे हो सकते हैं, शायद हैं भी।
तो फिर थोड़ा और अंदर चलते हैं इस किताब की दुनिया में, कुछ खास हिस्सों और उनके तर्कों को करीब से देखते हैं।
हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं।
तो शुरुआत एक ऐसे किस्से से होती है जो वाकई आंखें खोल देता है। किताब का पहला ही अध्याय है द नंबर्स गेम। साल 2010 की बात है। अफ्रीकी देश घाना ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जीडीपी गिनने का जो आधार वर्ष होता है बेस ईयर,
हाँ बेस ईयर,
उसे बदल दिया। यानी जिस साल की कीमतों पर जीडीपी नापी जाती है उसे अपडेट कर दिया। नतीजा
तो मतलब होश उड़ाने वाला था। रातों रात बिना किसी असली आर्थिक बदलाव के घाना की अर्थव्यवस्था कागजों पर 60% से ज्यादा बड़ी दिखने लगी।
60%?
हाँ सोचिए, 60%। कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई तेल का कुआं नहीं मिला,
कुछ भी नहीं।
बस एक नंबर बदल दिया गया, आधार वर्ष 1993 से बदल के 2006 कर दिया गया।
बिल्कुल, ये कोई आर्थिक चमत्कार तो था नहीं, ये तो आंकड़ों का खेल था।
जी,
हुआ ये था, जैसा किताब बताती है, कि पुराने आधार वर्ष में अर्थव्यवस्था के कई नए और तेजी से बढ़ते हिस्से, जैसे मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन सेक्टर,
हाँ, जो पहले थे ही नहीं या बहुत छोटे थे,
वो ठीक से दर्ज ही नहीं हो रहे थे। जैसे ही आधार वर्ष अपडेट हुआ वो सब जुड़ गए और जीडीपी एकदम से उछल गई। ये दिखाता है कि ये आंकड़े कितने नाजुक और बदलावों पर निर्भर हो सकते हैं।
और ये जो अविश्वसनीयता है ये कोई आज की बात नहीं है, है ना? किताब का दूसरा अध्याय हिस्ट्री हमें इन्हीं आंकड़ों की जड़ों तक ले जाता है, और जड़ें जाती हैं औपनिवेशिक काल तक, गुलामी के दौर तक।
अच्छा, कैसे?
ज़र्वेन बताते हैं कि उस जमाने में जो अंग्रेज या फ्रांसीसी शासक थे वो आंकड़े क्यों जमा करते थे,
बिल्कुल,
उनका मकसद क्या था?
हाँ, उनका मकसद क्या था?
उनका मकसद था टैक्स वसूलना, ये जानना कि कितने मजदूर मिल सकते हैं, कितना कच्चा माल बाहर भेजा जा सकता है,
मतलब पूरी तरह से अपने फायदे के लिए।
बिल्कुल, आम लोगों की जिंदगी कैसी है, उनका रहन सहन सुधर रहा या नहीं, ये नापना उनका मकसद कभी था ही नहीं। तो जो सिस्टम बना वो शासकों की जरूरतों के हिसाब से बना।
और जब आजादी मिली,
हाँ, तो कई अफ्रीकी देशों को विरासत में यही कमजोर सांख्यिकीय सिस्टम मिले। फिर आजादी के बाद राजनीतिक अस्थिरता, कहीं कहीं गृह युद्ध, और सबसे बढ़कर हमेशा पैसों की कमी, इन सब ने मिलकर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों को, एनएसओस को, और कमजोर कर दिया। सच तो यह है कि आंकड़ों को कभी वो अहमियत दी ही नहीं गई, वो प्राथमिकता मिली ही नहीं।
और आज इसकी असलियत क्या है, ये किताब के तीसरे हिस्से प्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में पता चलता है। ज़र्वेन हमें सीधे उन दफ्तरों के अंदर ले जाते हैं जहां ये आंकड़े बनते हैं, और तस्वीर काफी निराशाजनक है।
हाँ, बताते हैं कि कई दफ्तरों में स्टाफ की भारी कमी है, बजट ना के बराबर है, कंप्यूटर पुराने हैं, सर्वे करने के पैसे नहीं हैं।
तो फिर आंकड़े बनते कैसे हैं?
यहीं पर बात आती है अनुमानों की, एजुकेटेड गैसेस, और मान्यताओं की, इम्प्यूटेशंस,
मतलब अंदाजा लगाना।
हाँ, एक तरह से खाली जगहों को अक्सर पिछले ट्रेंड या किसी फॉर्मूले के आधार पर अंदाजा लगाकर भर दिया जाता है, क्योंकि असली डेटा इकट्ठा करने के संसाधन ही नहीं है। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा असल जानकारी पर नहीं बल्कि ऐसे ही अनुमानों पर टिका होता है।
बाप रे।
और जैसा घाना के मामले में देखा, कई देश तो सालों साल, दशकों तक अपना आधार वर्ष तक नहीं बदलते।
सोचिए जरा। और फिर एक और बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र चौथे अध्याय मेजरिंग एवरीथिंग में है, खेती और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नापना, इनफॉर्मल इकोनॉमी।
अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है अफ्रीका में, और काफी हद तक हमारे यहाँ भारत में भी।
बिल्कुल, हमारे यहाँ भी
अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है।
लाखों किसान हैं जो फसल उगाते हैं लेकिन वो बाजार में बिकती ही नहीं, घर में ही इस्तेमाल हो जाती है।
जी, और करोड़ों लोग हैं जो रेड़ी पटरी लगाते हैं, घरों में काम करते हैं, छोटा मोटा रोज इसका काम करते हैं।
इनकी कमाई को, इनके योगदान को जीडीपी में कैसे गिना जाए?
मौजूदा तरीके इसके लिए मतलब नाकाफी हैं, बहुत सी मान्यताओं पर आधारित हैं। नतीजा
ये कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अदृश्य रह जाता है, दिखता ही नहीं आंकड़ों में।
बिल्कुल।
और जब राष्ट्रीय आंकड़े ही ऐसे हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का क्या हल होगा? पांचवा अध्याय इंटरनेशनल डेटाबेस इसी पर रोशनी डालता है।
हाँ, हम अक्सर वर्ल्ड बैंक, IMF या पेन वर्ल्ड टेबल जैसे स्रोतों पर भरोसा करते हैं ना?
करते हैं, बिल्कुल।
लेकिन ज़र्वेन दिखाते हैं कि एक ही देश के लिए, एक ही समय के लिए, ये अलग अलग डेटाबेस कई बार बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। कोई दिखाता है कि देश तेजी से बढ़ रहा है, कोई दिखाता है कि ठहरा हुआ है।
क्या बात कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका के हाल के आर्थिक इतिहास के सबसे बुनियादी तथ्यों पर भी विशेषज्ञों में सहमति नहीं है।
यही तो, ये तो वाकई चिंता की बात है। इससे पता चलता है कि हम कितने अनिश्चित धरातल पर खड़े हैं।
और इस अनिश्चितता में राजनीति का भी बड़ा हाथ है। छठा अध्याय पॉलिटिक्स ऑफ डेटा इसी राजनीतिक खेल को उजागर करता है।
हाँ, कि आंकड़े कभी मासूम नहीं होते, उनके पीछे मकसद होते हैं।
कैसे मकसद?
सरकारें अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए, निवेश खींचने के लिए, या चुनाव जीतने के लिए आंकड़ों को बेहतर दिखाना चाह सकती हैं।
अच्छा।
या फिर ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, ज्यादा विदेशी मदद या कर्ज पाने के लिए अपनी आय कम करके दिखा सकती हैं।
ओह।
दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मदद देती हैं उन पर भी नतीजे दिखाने का दबाव होता है, तो हो सकता है वो भी कमजोर आंकड़ों को स्वीकार कर लें
या उन आंकड़ों को बढ़ावा दें जो उनकी रिपोर्ट में अच्छे लगे।
बिल्कुल, आंकड़ों का ये पूरा ताना बाना राजनीति से गहराई से जुड़ा है।
तो सवाल उठता है कि क्या इसका कोई हल है?
हाँ।
पिछले कई दशकों में अफ्रीका में सांख्यिकीय क्षमता स्टेटिस्टिकल कैपेसिटी बढ़ाने की काफी कोशिशें हुई हैं, पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन सातवें और आठवें अध्याय में जर्वेन बताते हैं कि ये कोशिशें ज्यादातर नाकाम क्यों रहीं।
हाँ, और वजह यह है कि वो अक्सर सिर्फ तकनीकी चीजों पर ध्यान देती रहीं, जैसे ट्रेनिंग देना, नए कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर देना, जबकि असली जड़ें ज्यादा गहरी हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, संस्थाओं की कमजोरी, लगातार फंड की कमी। जर्वेन कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा पैसा फेंकने से बात नहीं बनेगी, सोच बदलनी होगी।
क्या सुझाव देते हैं वो, कोई ठोस उपाय?
हाँ, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आंकड़ों में पारदर्शिता लाओ। खुलकर बताओ कि आंकड़े कैसे बने हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनमें कितनी अनिश्चितता है।
अच्छा, ईमानदारी मतलब।
बिल्कुल। फिर सिर्फ जीडीपी के पीछे मत भागो, दूसरे स्रोतों का भी इस्तेमाल करो, जैसे घाव के सर्वे, स्वास्थ्य और शिक्षा के आंकड़े। आजकल तो सैटेलाइट इमेज से भी काफी कुछ पता चल जाता है ना, खेती वगैरह के बारे में।
हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो।
और सबसे जरूरी, आंकड़ों की कमियों को स्वीकार करना सुधार की तरफ पहला कदम है।
इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत जरूरी संदेश या कह लें कि सबक मिलते हैं।
हाँ बिल्कुल।
मेरे लिए पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है सटीकता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ प्रिसिजन। हम अक्सर देखते हैं कि विकास के आंकड़े दशमलव के 2-3 अंकों तक दिए जाते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ 6.73%।
हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है मानो कितना सटीक हिसाब है।
जैसे हम मौसम का तापमान भी दशमलव में देखते हैं, जबकि सर्वे दिखाते हैं कि ये आंकड़े असल में बहुत अनिश्चित होते हैं, अनुमानों पर टिके होते हैं। ये झूठी सटीकता हमें गुमराह करती है। हो सकता है असल ग्रोथ 4% हो या 8%, हमें पक्का पता ही नहीं।
और इस झूठे भरोसे पर बनी नीतियां खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है सांख्यिकीय क्षमता ही राज्य क्षमता है, स्टेटिस्टिकल कैपेसिटी एज स्टेट कैपेसिटी।
ये बहुत गहरी बात है।
हाँ, मतलब भरोसेमंद आंकड़े बनाना सिर्फ गिनती करने का काम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश की सरकार कितनी मजबूत है, उसके संस्थान कितने कारगर हैं, वो कितनी जवाबदेह है।
अच्छा।
अगर किसी देश का शासन ही कमजोर है तो उसके आंकड़े भी कमजोरी होंगे, इसे सिर्फ बाहर से ट्रेनिंग देकर ठीक नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल। और तीसरा संदेश जो राजनीति वाले अध्याय से जुड़ता है, आंकड़ों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नंबर्स।
कि आंकड़े कभी न्यूट्रल नहीं होते। कौन सा आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा, कौन सा नहीं, उसे कैसे पेश किया जाएगा, ये सब सत्ता, राजनीति और प्राथमिकता से तय होता है।
ये समझना जरूरी है कि आंकड़ा कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है और किसके फायदे के लिए बना रहा है।
बिल्कुल। आंकड़ों के पीछे की राजनीति को समझे बिना हम उन्हें सही मायने में नहीं समझ सकते।
चौथा संदेश जो ओरिलिग भारत के संदर्भ में भी बहुत मायने रखता है, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की चुनौती, द इनफॉर्मैलिटी चैलेंज।
हाँ, जैसा हमने पहले कहा, अफ्रीका की और भारत की भी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सरकारी खातों से बाहर है।
रेहड़ी पटरी वाले, छोटे किसान, घरेलू कामगार, करोड़ों लोग।
मौजूदा तरीके इन्हें ठीक से गिनी नहीं पाते। नतीजा, लाखों लोगों की मेहनत, उनका आर्थिक योगदान अदृश्य रह जाता है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही नहीं देख पाते।
सही बात है। और पांचवा संदेश है अंतर्राष्ट्रीय तुलना का दबाव, टिरनी ऑफ इंटरनेशनल कंपैरिजंस।
आजकल हर चीज की रैंकिंग होती है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, हाँ हाँ, लिस्ट आती रहती है।
जर्वेन कहते हैं कि देशों की एक दूसरे से तुलना करने का ये जो जुनून है, ये आंकड़ों की प्राथमिकताएं बिगाड़ सकता है। देश शायद उन आंकड़ों को जुटाने में ज्यादा मेहनत करने लगे जो रैंकिंग सुधारें या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चाहिए,
भले ही वो आंकड़े देश की अपनी जरूरत के लिए उतने काम के ना हो।
बिल्कुल, ये संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो सकता है।
वाकई ये किताब सोचने पर मजबूर करती है। इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जो जर्वेन के तर्कों का निचोड़ है एक तरह से।
हाँ बिल्कुल। जैसे एक जगह वो कहते हैं कि समस्या सिर्फ खराब आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये है कि हम दिखावा करते हैं कि वे खराब नहीं हैं।
कितनी सीधी और सच्ची बात है।
हाँ, असली खतरा शायद गलत आंकड़ों से उतना नहीं जितना इस बात से है कि हम उनकी कमियों को जानते हुए भी उन्हें सटीक मानकर फैसले लेते रहते हैं। हमें ईमानदारी से ये स्वीकार करना होगा कि कि हमारे आंकड़े परफेक्ट नहीं हैं।
और वो दूसरी बात जिसका हमने जिक्र किया, सांख्यिकीय शक्ति राज्य शक्ति है।
हाँ, ये छोटी सी लाइन बहुत कुछ कहती है।
ये हमें याद दिलाती है कि अच्छे आंकड़े अच्छी गवर्नेंस का नतीजा होते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल मसला नहीं है,
ये देश चलाने के तरीके, संस्थाओं की मजबूती और राजनीतिक इच्छा शक्ति से जुड़ा है।
एक और दिलचस्प विचार है, आंकड़ों को ताकत सटीकता से नहीं दोहराव से मिलती है।
ये भी गौर करने वाली बात है।
सोचिए इस बारे में, मतलब अगर कोई अविश्वसनीय आंकड़ा भी बार बार दोहराया जाए, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में छपे, मीडिया में आए,
तो धीरे धीरे लोग उसे सच मानने लगते हैं, भले ही वो गलत हो।
ये हमें सिखाता है कि सुनी सुनाई बातों या बार बार दिखने वाले आंकड़ों पर तुरंत यकीन न करें, थोड़ा रुक कर सोचें।
बिल्कुल, और आखिर में वो सांख्यिकीय विनम्रता वाली बात।
हाँ, स्टैटिस्टिकल ह्यूमिलिटी।
ये एक नजरिया है, एक अप्रोच है, ये मानना कि विकास जैसे पेचीदा मुद्दे पर हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारे आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, इसलिए जब नीतियां बनाएं तो इस अनिश्चितता को ध्यान में रखें।
ऐसी नीतियां बनाएं जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच के बावजूद काम करें,
न कि सिर्फ उस अकेले आंकड़े पर टिकियों जिस पर हमें खुद पूरा भरोसा नहीं है।
तो इन सब बातों का मतलब क्या है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए या बड़े फैसलों के लिए, इन्हें हम कैसे लागू कर सकते हैं?
देखिए, अगर कोई पॉलिसी मेकर है, नीति बनाने वाला है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ GDP के नंबर के पीछे मत भागिए। देखिए कि लोगों की सेहत कैसी है, बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, पीने का साफ पानी है या नहीं, रोजगार मिल रहा है या नहीं,
मतलब जमीनी हकीकत देखनी चाहिए।
बिल्कुल, और ऐसी नीतियां बनाइए जो आंकड़ों की अनिश्चितता को झेल सकें, रोबस्ट पॉलिसीज जिन्हें कहते हैं।
और अगर कोई रिसर्चर है, पत्रकार है या अकादमिक जगत से है,
तो आंकड़ों का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहिए। हमेशा बताइए कि आंकड़ा कहाँ से आया, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसे कैसे गिना गया था।
स्रोत बताना जरूरी है,
बहुत जरूरी। सिर्फ हेडलाइन वाले नंबर पर मत जाइए, उसके पीछे की कहानी और संदर्भ को भी समझने और बताने की कोशिश कीजिए। डेटा की आलोचनात्मक जांच बहुत जरूरी है।
और अगर हम जैसे आम नागरिक हैं, हमारे लिए क्या है इसमें?
हमारे लिए ये किताब हमें एक जरूरी हुनर सिखाती है, सवाल पूछना।
अच्छा,
अगली बार जब भी आप किसी देश की तरक्की या गरीबी के बारे में कोई आंकड़ा सुने या पढ़ें, तो एक पल रुकिए, पूछिए, ये नंबर आया कहां से, किसने जारी किया, इसे कैसे नापा गया होगा, क्या इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा, क्या ये पूरी कहानी है।
थोड़ा शक करना, सवाल पूछना,
एक जागरूक नागरिक होने की निशानी है।
और हाँ, निवेशकों के लिए भी ये बहुत जरूरी सबक है ना।
अरे हाँ, बिल्कुल। जो लोग विकासशील देशों में, चाहे वो अफ्रीका हो या कहीं और, पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ सरकारी आंकड़ों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी तरफ से जमीनी हकीकत पता करनी चाहिए, लोकल लोगों से बात करनी चाहिए, कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटानी चाहिए।
सही है,
वरना आंकड़ों का ये खेल उनके निवेश को डुबो सकता है।
बिल्कुल। तो अंत में अगर मुझसे पूछें कि इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख क्या है, तो वो यही है, आंकड़ों को लेकर और खासकर विकास के दावों को लेकर हमें थोड़ा विनम्र होना चाहिए। सटीकता का जो पर्दा हमें दिखाया जाता है, वो खतरनाक हो सकता है। ये मानना कि हम सब कुछ ठीक ठीक नहीं जानते, शायद बेहतर और ज्यादा जमीनी फैसले लेने की तरफ पहला कदम है।
और मेरे लिए सबसे यादगार बात ये रही कि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, वो राजनीति, समाज और संस्थाओं की कहानी कहते हैं। ये जानना कि कोई आंकड़ा कैसे बना है, क्यों बना है, उतना ही जरूरी है जितना कि खुद वो आंकड़ा।
हाँ,
ये किताब हमें डेटा को सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि उसे पढ़ने और समझने का एक ज्यादा गहरा तरीका सिखाती है।
बिल्कुल, पुअर नंबर्स वाकई एक जरूरी किताब है जो हमें विकास की जटिलताओं को ज्यादा ईमानदारी और आलोचनात्मक नजरिए से देखने में मदद करती है।
जी,
और ये सिर्फ अफ्रीका के बारे में नहीं है, है ना, ये सबक तो दुनिया के किसी भी हिस्से में आंकड़ों और विकास के दावों को समझने के लिए काम आ सकते हैं।
बिल्कुल आ सकते हैं।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर विकास के सबसे बुनियादी आंकड़े इतने अविश्वसनीय हो सकते हैं, तो फिर हम प्रगति को असल में कैसे मापें? क्या GDP के अलावा हमें पूरी तरह से नए पैमानों की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।